नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 सप्ताह के अंदर ईरान युद्ध समाप्त करने की घोषणा की। विश्व की सबसे बड़ी और पहली डिजिटल जनगणना 2027 भारत में आज से शुरू। भारतीय मूल की अनुवादक पद्मा विश्वनाथन को वर्ष 2026 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। क्रीमिया में एक चट्टान से टकराने से रूसी सैन्य विमान में मौजूद 29 यात्रियों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध अगले 2 से 3 सप्ताह के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीकी सेना के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जल्द पूरा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से वापस लौटने से पहले अमरीका ईरान की हर उस क्षमता को निष्क्रिय करना चाहता है जो उसके लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने युद्ध समाप्त करने से पहले एक संभावित समझौते का भी संकेत दिया। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अमेरिका का मिशन पहले दिन से ही स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि ईरान के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने का ये अंतिम और सबसे अच्छा मौका है ताकि वे कभी भी परमाणु हथियार हासिल न कर सकें। एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के प्रति निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें आगे बढ़कर महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य मार्ग की सुरक्षा के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने संघर्ष में ब्रिटेन जैसे देशों से अपेक्षित सैन्य सहयोग न मिलने की बात भी कही। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डाक द्वारा मतदान को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। इस कदम से चुनाव नियमों को और सख्त करने के प्रयास तेज हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
इस कार्यकारी आदेश में गृह सुरक्षा विभाग को सामाजिक सुरक्षा प्रशासन के साथ मिलकर प्रत्येक राज्य में मतदान करने के योग्य सत्यापित अमरीकी नागरिकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में राज्यों को डाक द्वारा भेजे जाने वाले मतपत्रों पर सख्त नियम लागू करने की आवश्यकता बताई गई है। राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि ये सूची सामाजिक सुरक्षा प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके तैयार की जाएगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि अमरीकी डाक सेवा केवल संघीय रूप से तैयार सूची में शामिल व्यक्तियों को ही अनुपस्थित मतपत्र भेज सकती है। प्रत्येक मतपत्र के लिए एक ही लिफाफा भेजा जाएगा। ये कदम अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना उठाया गया है और इसे कानूनी रूप से चुनौती दिए जाने की आशंका है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
राष्ट्रपति ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में जन्मजात नागरिकता पर होने वाली सुनवाई के दौरान आज उपस्थित रहेंगे। देश की सर्वोच्च अदालत में मौखिक बहस में भाग लेने वाले वे पहले मौजूदा राष्ट्रपति बन जाएंगे। व्हाइट हाउस द्वारा जारी राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट में उनकी उपस्थिति भी शामिल है, जहां न्यायाधीश ट्रंप की उस अपील पर सुनवाई करेंगे जिसमें उन्होंने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने वाले उनके कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन एक आदेश जारी किया था जिसके अनुसार अमरीका में अवैध रूप से या अस्थायी रूप से रह रहे माता पिता से पैदा हुए बच्चे अमरीका के जन्मजात नागरिक नहीं होंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या प्रक्रिया जनगणना 2027 का पहला चरण आज से भारत में शुरू होगा। जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। इसके लिए 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि निर्धारित किया गया है। एक रिपोर्ट।
पहली बार जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी। इसमें स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह स्वगणना आज से 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण और आवास गणना 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण में सभी भवनों और संरचनाओं की सूची तैयार की जाएगी तथा आवासीय स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। भवनों की जियो टैगिंग भी की जाएगी और प्रत्येक संरचना को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। देश भर में इस कार्य के लिए 30 लाख से अधिक गणना कर्मी, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही नागरिक 16 भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए से अधिक राशि को मंजूरी दी है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि ये जनगणना पिछली जनगणना से अलग है। उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों की इस जनगणना में भागीदारी करने के तरीकों को भी स्पष्ट किया है।
प्रथम चरण बेसिकली मकानों की गणना और मकान सूचीकरण है। इसमें अगर बाहर रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे चरण में जब एक व्यक्ति की गणना कराते हैं तो उसमें जो बाहर रहने वाले हैं उनको एम्बेसी के माध्यम से उनकी गणना कराने की व्यवस्था है।
जुलाई 2025 के मध्य में समाप्त वित्त वर्ष 2024-25 में भारत नेपाल को द्विपक्षीय सहायता प्रदान करने वाला सबसे बड़ा दाता देश बनकर उभरा है। भारत ने नेपाल को करीब 108 मिलियन डॉलर की सहायता राशि भेजी है। नेपाल के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विकास सहयोग रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार ब्रिटेन 84 मिलियन डॉलर की सहायता राशि के साथ दूसरे स्थान पर रहा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम पुर्तगाल के विदेश मंत्री पाउलो रानगेल से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारत और पुर्तगाल के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। भारतीय मूल की कनाडाई अमरीकी लेखिका और अनुवादक पद्मा विश्वनाथन को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। उन्हें ब्राजील की लेखिका एना पाउला माया के उपन्यास ऑन अर्थ इज एट ईज बीनीथ के अंग्रेजी अनुवाद के लिए ये स्थान मिला है। पूर्व में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार के नाम से जाने जाने वाला ये सम्मान हर वर्ष उस कथा साहित्य कृति को दिया जाता है जो मूल रूप से अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में लिखी गई हो और बाद में उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो। इस पुरस्कार के विजेता को 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि दी जाएगी जो विजेता लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से वितरित होगी। विजेता की घोषणा 19 मई को लंदन के टेट मॉडर्न में आयोजित समारोह में की जाएगी। रूस का एक AN-26 सैन्य परिवहन विमान क्रीमिया में एक चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 29 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 23 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य मारे गए हैं। प्रारंभिक जांच के अनुसार दुर्घटना का कारण तकनीकी खराबी को माना जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बुजुर्गों और सामाजिक नेताओं की संयुक्त सभा जिरगा ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया है। ये घोषणा कल पेशावर में जिरगा के समापन पर जारी की गई। बैठक में पूर्व राज्यपाल, राजनेता, पूर्व राजनयिक, आदिवासी बुजुर्ग, बुद्धिजीवी और धार्मिक विद्वानों ने भाग लिया। आईपीएल क्रिकेट में चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 162 रन बनाए। कूपर कॉनली के नाबाद 72 रन की पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। साइकिलिंग में भारत ने फिलीपींस के टेगाइटी में 25 से 31 मार्च तक आयोजित एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 सप्ताह के अंदर ईरान संघर्ष समाप्त करने की घोषणा की। विश्व की सबसे बड़ी और पहली डिजिटल जनगणना 2027 भारत में आज से शुरू। भारतीय मूल की अनुवादक पद्मा विश्वनाथन को वर्ष 2026 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। क्रीमिया में एक चट्टान से टकराने से रूसी सैन्य विमान में मौजूद 29 यात्रियों की मौत। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।